नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज का एपिसोड गुरु द मास्टर समर्पित है ओशो के सेलिब्रेशन, ओशो के बर्थडे पर। आज के एपिसोड में डिस्कोर्स हरि बोलो हरी बोल वॉल्यूम नंबर 9 से लिया गया है।
Oh. धीरजवंत अडिग जितेंद्री निर्मल ज्ञान गयो दृढ़ आदु सील संतोष क्षमा जिनके घट लागी रहो सु अनाहत नादु और जिनके भीतर ज्ञान की जागृति होती है उनके भीतर अनाहत नाद बजता है उनके भीतर ओंकार जन्मता है उन्हें मंत्र रटने नहीं पड़ते उनके भीतर मंत्रोच्चार होता है वे तो उसके भी साक्षी होते उनके भीतर ये जगत अपूर्व भंगिमाया में प्रकट होने लगता है अपूर्व सौंदर्य और संगीत और प्रकाश वे उसके भी साक्षी होते वे उससे भी भ्रांत नहीं होते वे उसके साथ भी अपना तादात्म्य नहीं कर लेते सील संतोष क्षमा उनके भीतर अपने आप पैदा हो जाते इनको साधना नहीं पड़ता सील संतोष क्षमा जिनके घट लागी उनके घट से उनके अंतर से प्रकट होने लगती लागी रहो सु अनाहत नादु उनके भीतर सदा 24 घंटे उठते बैठते जागते खाते पीते चलते उठते बोलते सुनते हर घड़ी अहिर्निश एक नाद बजता रहता है उनकी वीणा पर परमात्मा की अंगुलियां पड़ गई मगर वीणा को इस योग्य तो बनाओ कि परमात्मा बजाने योग्य समझे उसे कसो वीणा को वाद्य को तैयार करो वेश न पक्ष निरंतर लक्षजू और नहीं कछु वाद विवाद वहां ना कोई वाद है ना कोई विवाद है वहां सन्नाटा है उसी सन्नाटे में अनाहत नाद है भेष न पक्ष और वहां कोई संप्रदाय भी नहीं है कि मैं इस संप्रदाय का कि मैं उस संप्रदाय का न वहां कोई पक्ष कि मैं इस पक्ष का कि उस पक्ष का वहां तो निरंतर एक ही लक्ष्य में वही एक परमात्मा ये सब लक्षण हैं जिनमाही सुसुंदर के उर है गुरु दादू और ये लक्षण है ख्याल रखना ये साधना नहीं करनी है तुम्हें इन चीजों की जब तुम्हारे भीतर परमात्मा अवतरित होता है तो ये लक्षण प्रकट होते जब वसंत आता है तो वृक्षों पर फूल लग जाते ये लक्षण है सुबह होता है पक्षी गीत गाने लगते ये लक्षण है इससे उल्टा मत कर लेना ये मत सोचना कि पक्षियों को अगर हम गीत गाना सिखा दें और आधी रात में पक्षी गीत गा दें तो सुबह हो जाएगी नहीं पक्षियों को तुम सिखा सकते हो गीत गाना आधी रात में गाएंगे और तुम बाजार से फूल खरीद के वृक्षों पर लटका भी सकते हो मगर किसको धोखा होगा इस वसंत नहीं आ जाएगा वसंत आता है तो फूल खिलते सुबह होती तो पक्षी गीत गाते ये लक्षण है लक्षण से तुम मूल को पैदा नहीं कर सकते मूल से लक्षण अपने आप पैदा होता ये बहुत कीमती बात है ख्याल में रखने की महावीर को हमने देखा उनके जीवन में परम अहिंसा है यह लक्षण है सिर्फ समाधि का फल है और उनके पीछे चलने वाले मुनियों की जमात है वो समझते हैं कि ये समाधि का कारण है वो सोचते हैं अहिंसा सधेगी तो समाधि आ जाएगी भ्रांति में हो तुम अहिंसा साध सकते हो अहिंसा साधना बहुत कठिन नहीं पानी छान के पी लोगे रात भोजन ना करोगे चलते फिरते जरा ख्याल रखो कोई चींटी इत्यादि ना दब जाए किसी की हत्या ना करोगे अहिंसा साध सकते हो मांसाहार ना करोगे ये सब किया जा सकता है कितने लोग इस तरह की अहिंसा साधे हुए लेकिन समाधि कहां पक्षियों को गाना सिखा दिया आधी रात में आज्ञा दे दी आधी रात में गाने लगे मगर सुबह नहीं उगती सुबह नहीं होती प्लास्टिक के फूल खरीद लाए वृक्षों को फूलों से लाद दिया वसंत नहीं आता वसंत आए तो फूल लगते सुबह हो तो पक्षी गीत गाते महावीर को भीतर समाधि फली अनाहत का नाद हुआ उस नाद के कारण अहिंसा आई अहिंसा लक्षण है कारण नहीं परिणाम है और जिनने बाहर से देखा समाधि तो दिखती नहीं समाधि तो अंतर अनुभव है उसकी तो कोई उपाय नहीं बाहर से देखने का। उन्होंने तो बाहर से लक्षण देखे, उन्होंने देखा कि ठीक, महावीर बहुत संभल संभल के चलते, रात भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते, चींटी मारते नहीं। उन्होंने सोचा हम भी ऐसा ही करें तो हमें भी महावीर जैसा अनुभव हो जाएगा। वो सदियों से कर रहे हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ। वो सदियों तक करते रहे, उन्हें अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उल्टी बात पकड़ ली। लक्षण दिखाई पड़ते, मूल दिखाई नहीं पड़ता, और मूल ही असली बात है। ये सब लक्षण है जिन माही सो सुंदर के उर हैं गुरु दादू। ऐसे लक्षण वाले दादू सुंदरदास के हृदय में समा गए, वे सुंदरदास के गुरु हैं। गुरु होने का अर्थ होता है किसी के सामने आनंद विभोर होकर अपनी हार स्वीकार कर लेना। तुमने ये राज देखा या नहीं? एक जीत है जो जीत से होती, एक जीत है जो हार से होती, और जो जीत हार से होती है उसके मुकाबले पहली जीत की कोई कीमत नहीं। एक जीत है जो जीत से होती मगर वो पूरी कभी नहीं होती, क्योंकि जिसको तुमने जीत लिया है वो हमेशा तैयारी करता है कि कब बदला ले ले, कब तुम्हें हरा दे। प्रतिशोध की आग जलती रहती। एक और जीत है जो प्रेम की जीत है। तुम हार जाते हो, तुम किसी के सामने झुक जाते हो और उसे जीत लेते हो। प्यार की हार से डरना कैसा? प्यार की हार भी जीत है प्यारे। टूटे दिल की टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे। प्यार के टुकड़े कदम कदम पर एक अछूती राह समझाएं। मानो इस अंधियारे जग में, वरना इस अंधियारे जग में कौन किसी का मीत है प्यारे। उजली सेज पे सोने वाले प्यार की सुंदरता क्या जाने। प्रेमी की पलकों पर मोती सांसों में संगीत है प्यारे। अपनी आशाओं की कलियां इस दुनिया से ओझल कर लो। फूल पे धूल उड़ाकर हंसना इस दुनिया की रीत है प्यारे। रात के गहरे सन्नाटे में सबनम बनकर रोने वाली या चंदा की ढलती छाया या पंछी की प्रीत है प्यारे। प्यार की हार से डरना कैसा? प्यार की हार भी जीत है प्यारे। टूटे दिल की टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे। दादू को दिल में बसाया, उसका अर्थ समझे? उसका अर्थ हुआ दादू के चरणों में सिर रखा और हार गए। जो शिष्य गुरु से हार जाए वो जीत के रास्ते पर चल पड़ा। शिष्य का अर्थ ही है कि सौभाग्यशाली हूं कि कोई मिला जिसके सामने हारने की मेरी तैयारी, कोई मिला जिसके साथ हारने में मजा है। कोवुक गोरख को गुरु थापत, कोवुक दत्त दिगंबर आदु, कोवुक कंथर कोउ भरथर, कोउ कबीर कोउ राखत नादु, कोई कहे हरदास हमारे जू, यो कर ठानत वाद बेवादु, और तो संत सबे सिरी ऊपर, सुंदर के उर है गुरु दादू। प्यारा वचन है। कहते हैं किसी ने गोरख को गुरु माना, किसी ने दत्तात्रेय को गुरु माना, किसी ने दिगंबर आदिनाथ को गुरु माना, किसी ने कंथर को, किसी ने भरथरी को, किसी ने कबीर को। अलग अलग लोगों ने अलग अलग गुरु माने। कोई कहे हरदास हमारे जो, कोई हरिदास को मानता है। लेकिन मजा यह है कि ये सब बात विवाद ठानते, बस वहीं चूक हो रही। गुरु मिला फिर क्या बात विवाद है, फिर किसे फुर्सत बात विवाद की। अगर गुरु को पाके भी बात विवाद चल रहा है, अगर गुरु को पाके भी आदमी बात विवाद में उलझाए, तो उसका केवल इतना ही अर्थ हुआ कि तुमने गुरु के बहाने बात विवाद के लिए एक नया निमित्त खोज लिया, और कुछ भी नहीं, तुम वही पुराने के पुराने हो। वही खोपड़ी में विचारों का जाल वही उपद्रव। अब तुमने उपद्रव के लिए एक और नई तरकीब खोज ली। लड़ते तुम अब भी हो, पहले किसी और कारण से लड़ते थे, हो सकता राजनीतिक दलबाजी हो उसमें लड़ते थे, अब राजनीतिक दलबाजी नहीं रही, अब धार्मिक दलबाजी। मगर फर्क जरा भी नहीं पड़ा, अब भी लड़ते हो, पहले भी झंडे उठाए थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो झंडे राजनीति के रहे होंगे, अब भी झंडा उठाए हो, वो झंडे धर्म के हो गए, मगर तुम्हारे हाथ में वही का वही डंडा है, झंडे भला बदल गए हो, तुम नहीं बदले। इसको ख्याल रखना, आदमी बड़ी मुश्किल से बदलता है, सब बदल लेता है और वही का वही रहता है। यह आदमी की ऐसी कुशल तरकीब है, धन छोड़ देता है, मगर धन के कारण जो अहंकार था वही अहंकार त्याग के भीतर खड़ा हो जाता। वो कहने लगता, मैंने इतना त्याग किया, मेरे बराबर त्यागी कौन है? पहले कहता था मेरे बराबर धनी कौन है, फिर कहता मेरे बराबर त्यागी कौन। ऊपर से दिखता बड़ा फर्क पड़ गया इस आदमी में, बेचारा देखो तो कैसा सब छोड़ के चला गया, मगर जरा भीतर झांको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है और बड़े बारीक उसके रास्ते, एक दरवाजे से निकालो दूसरे से भीतर आ जाता। तो जरा संभल के चलना, नहीं तो तुम सारे उपद्रव धर्म की दुनिया में लेके पहुंच जाते। वही लड़ाई झगड़े जो बाजार में थे वही मंदिर मस्जिद में हो गए। फिर हुआ क्या? को कहे हरदास हमारे, जो यूं कर ठानत बाद विवादू। सुंदरदास कह रहे हैं कबीर मिल गए फिर का बाद विवाद, फिर पियो, फिर नाचो, फिर उत्सव मनाओ। भरथरी मिल गए कि आदिनाथ, अब कहां उपद्रव में पड़े हो? मंदिर अपनी ताकत लगा रहा है मस्जिद से लड़ने में, मस्जिद ताकत लगा रही मंदिर से लड़ने में, नाचोगे कब? प्रार्थना कब होगी? गाली गलौज जारी है, मंदिर वाले मस्जिद को गाली दे रहे हैं, मस्जिद वाले मंदिर को गाली दे रहे हैं, प्रार्थना कब करोगे? और ये गालियां जिन ओंठों से निकल रही इन पर प्रार्थना आएगी कैसे? ये ओंठ प्रार्थना के पात्र ही नहीं रह गए। सुंदरदास कहते हैं और तो संत सबे से ऊपर। सुंदरदास कहते हैं कि मेरे सब संतों को नमस्कार मेरे सिर ऊपर, और तो संत सबे सिर ऊपर, मेरे प्रणाम उनको, मेरे प्रणम में है, मेरे वंदनी। लेकिन द्वार तो मुझे दादू से खुला है, सुंदर के उर है गुरु दादू। इसलिए इतना कहूंगा विवाद नहीं है, फर्क समझना इस बात को, यह फर्क महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं कह रहे हैं कबीर गलत है, वो कहते हैं मेरे प्रणम में है, मेरे प्रणाम उनको। मगर रही जहां तक मेरी बात, मेरे दादू नहीं, मुझे परमात्मा से मिला है, ये मेरा दरवाजा है। जिनके लिए कबीर दरवाजे, वे धन्यभागी, वे उस द्वार से प्रवेश करें। मुझे मंदिर में मिला, मुझे मस्जिद में मिला कि गुरुद्वारे में, जिन्हें और कहीं मिल गया, मिला बस यही बात सच है, यही बात काम की, विवाद कुछ भी नहीं। साधु चित्त का लक्षण है विवाद का अभाव। और तो संत सबे सिर ऊपर, सुंदर के उर है गुरुदादू। लेकिन इतना निवेदन कर देते हैं कि सबके लिए मेरा सिर झुका है, लेकिन जहां तक मेरे हृदय की बात है वहां दादू विराजमान है। मगर दादू विराजमान हो गए कि दादू में सब विराजमान हो गए? नानक, कबीर, कृष्ण, क्राइस्ट सब विराजमान हो गए, क्योंकि गुरुओं के रंग ढंग कितने ही अलग हों, उनकी गुरुता एक है, उनके भीतर की महिमा एक है। जिसने एक को जाना उसने सबको जान लिया। तुम एक सदगुरु से संबंध जोड़ लो, तुम्हारे सब सदगुरुओं से संबंध जुड़ गए, फिर विवाद संभव नहीं। विवाद की फुर्सत किसे? ऊर्जा जब नाचने को हो गई, समय जब वसंत का आ गया, फिर कौन विवाद करता है? गुरु का प्रयोजन क्या है, क्यों व्यक्ति गुरु को तलाशे, क्यों किसी को उर में बसाए और क्यों किसी चरणों में सिर झुकाए। पहाड़ों से ऊंचे सिर, मैदानों से चौड़ी छातियां, आसमान से बुलंद जातियां पैदा होते हैं, होती हैं, होते रहेंगे, होती रहेंगी। पहाड़ इसीलिए तने हैं, मैदान इसीलिए बने हैं, टकता रहता है आसमान हर रात इसीलिए नीले सितारों से कि ऊंचे और चौड़े और बुलंद इन सहारों से नपते रहे हमारे इरादे और बने रहे फिर भी हम स्वाभाविक और सीधे साधे। रखकर अपने को विराट के फलक पर और विराट होता रहे चकित, बड़े होकर भी साधारण बने रहने की हमारी ललक पर। गुरु से संबंध जोड़ने का अर्थ क्या है? ताकि थोड़ी हमारी आंखें आकाश की तरफ उठें, विराट की तरफ उठें। जिसके आंगन में विराट उतरा हो उससे थोड़ा हमारा संबंध हो जाए तो हम भी उसके साथ साथ थोड़े पंख फड़फड़ाएं, थोड़ा उड़े, थोड़े हम भी ऊंचाइयां छुएं कि ऊंचे और चौड़े और बुलंद इन सहारों से नपते रहें हमारे इरादे, कि हम गुरु को देखकर नापते रहें अपने इरादों को, अभी हम कितने दूर, अभी कितना फासला, कि ऊंचे और चौड़े और बुलंद इन सहारों से नपते रहें हमारे इरादे और बने रहें फिर भी हम स्वाभाविक और सीधे साधे। वो दूसरी बात भी बड़ी जरूरी है। सदगुरु से संबंध इसलिए आवश्यक है कि हम असाधारण हो जाएं तो भी हमारी साधारणता ना खो जाए, हम शिखर छू लें जीवन का, लेकिन कहीं अहंकार अकड़ के विराजमान ना हो जाए सिंहासन पर। सदगुरु के साथ पहले तो हमारी आंखें आकाश की तरफ उठती और दूसरी बात, सदगुरु के साथ हमारे पैर जमीन में गड़े रहते। सदगुरु हमें जड़ें भी देता है और पंख भी, जड़ें कि हम जमीन को कभी छोड़ ना दें, कि हम अपने को विशिष्ट ना मानने लगे, कि अहंकार किसी तरह से आना जाए, और आकाश में उड़ने की क्षमता भी। ये दो कारण हैं सदगुरु से जुड़ने के। गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को, बहुत अद्भुत वचन। सुंदरदास कहते हैं गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को। गोविंद ने बनाया लोगों को और लोग नरक जा रहे हैं। गुरु उपदेशे सु तो छूटें जम फंद से। गुरु का उपदेश सुन लें तो मृत्यु के फांस से छूट जाएं, फांसी कटे। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के। गोविंद के बनाए हुए जीव और कर्म के चक्रों में पड़ गए, वासनाओं में उलझ गए, इंद्रियों में उलझ गए, हजार तरह के कारागृहों में पड़ गए। गुरु के निवाजे सो फिरत हैं स्वच्छंद थे, लेकिन जिसको गुरु ने उबारा वह मुक्त होकर, वह मुक्ति होकर, स्वतंत्रता बनकर, स्वच्छंदता बनकर विचरता है। वे ये कह रहे हैं कि जरा देखो तो गोविंद के बनाए हुए जीव की ऐसी गति हो रही, जिस पर गोविंद के हाथ की छाप है वो भटक रहा है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु का हाथ पड़ा वो संभल गया है। ऐसा मत सोचना कि सुंदरदास कुछ गोविंद की निंदा कर रहे हैं, वो बड़ी मधुर बात कह रहे हैं। उस मधुर बात के गहराई में उतरना जरूरी। परमात्मा स्वतंत्रता देता है, यह उसकी भेंट है। स्वतंत्रता में बुरे होने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, क्योंकि वह स्वतंत्रता तो क्या स्वतंत्रता होगी जिसमें अच्छे ही होने की स्वतंत्रता हो, वो तो स्वतंत्रता ना होगी, वह तो परतंत्रता ही होगी। और परतंत्रता कैसे अच्छी हो सकती? तो गुरु कुछ और देता है, परमात्मा कुछ और। परमात्मा स्वतंत्रता देता है कि तुम्हें जो होना हो जाओ, तुम्हारी किताब को कोरी छोड़ देता है, तुम्हें जो लिखना हो लिख लो, तुम्हें पाप करना हो पाप करो, पुण्य करना हो पुण्य, तुम पूरे स्वतंत्र हो। और स्वभावतः नीचे उतरना आसान है, ऊपर चढ़ना कठिन है, लोग नीचे उतरते। लोग पाप में उतरते, पाप में प्रबल आकर्षण मालूम होता है क्योंकि सरल मालूम होता है। परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है और परिणाम यह है कि लोग गुलाम हो गए वासनाओं के, संसार के। गुरु का काम ठीक उल्टा है, गुरु अनुशासन देता है, गुरु तुम्हारे जीवन को जीने का ढंग शैली देता है, गुरु शासता है, शासन देता है, तुम्हारे जीवन को एक रंग रूप देता है, तुम्हारे अनगढ़ पत्थर को ढालता है। इसलिए ऊपर से तो ऐसा लगता है कि जो लोग गुरु के पास गए वो गुलाम हो गए, ऊपर से ये बात ठीक भी मालूम पड़ती, क्योंकि अब गुरु जो कहेगा वैसा वो जिएंगे, गुरु का इशारा अब उनका जीवन होगा, गुरु के सहारे चलेंगे, गुरु की नाव में यात्रा होगी, गुरु की शर्तें स्वीकार करनी होगी, गुरु के प्रति समर्पण करना होगा। तो बड़ा विरोधाभास, परमात्मा स्वतंत्रता देता है और परिणाम है कि सभी लोग परतंत्र हो गए, और गुरु अनुशासन देता है और परिणाम में स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति अनुशासित होता है, जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में एक व्यवस्था, एक तंत्र पैदा होता है, जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में होश संभलता है, जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन जागरूक जीवन होने लगता है, वैसे वैसे स्वतंत्रता का नया आयाम खुलता है, स्वच्छंदता पैदा होती है। स्वच्छंदता शब्द का अर्थ उच्छृंखलता मत कर लेना, स्वच्छंदता का ठीक वही अर्थ होता है जो स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता से भी बहुमूल्य शब्द है स्वच्छंदता। स्वच्छंद का अर्थ होता है जिसके भीतर का छंद जग गया, जिसके भीतर का गीत जग गया, जो अपना गीत गाने के योग्य हो गया, जो गीत गाने को परमात्मा ने तुम्हें भेजा था और तुम भटक गए थे, जो बनने तुम्हें परमात्मा ने भेजा था लेकिन तुम विपरीत चले गए थे क्योंकि और हजार आकर्षण थे और तुम्हें कुछ होश न था। ऐसा ही समझो कि छोटे बच्चे को तुमने बड़ी से बड़ी बहुमूल्य किताब ला के दे दी और उसने उसको गूद डाला, अभी उसे लिखना आता ही नहीं। कुछ अर्थपूर्ण बात तो तभी लिख सकेगा जब लिखना आए, लेकिन लिखने के पहले गुरु की प्रक्रिया से गुजरना होगा, किसी पाठशाला से गुजरना होगा, फिर यही गूदना लिखना बन जाता है। है तो वो भी गूदना मगर उसमें अर्थ आ जाता है, उसमें भाव आ जाते। यही गूदना धीरे धीरे सम्यक रूप ले लेता है, आकार ले लेता है, और इसी गूदने में से महाकाव्य पैदा हो सकता है। हम गीत लेकर आए हैं अपने प्राणों में, जो गाना है, जिसको बिना गाए तृप्ति नहीं मिलेगी, जिसे गाओ तो ही तृप्ति है, जिसे जिस दिन गा लोगे, जैसे ये कोयल सुनते हो कुहू कुहू कहे जा रही, ये उसके प्राणों का गीत है। वृक्षों में फूल खिले हैं, ये उनके प्राणों के गीत है। मनुष्य के भीतर भी कोई गीत छिपा है, उस गीत का नाम ही निर्वाण है, मोक्ष। जब तुम अपना गीत गालोगे उसी गीत के गाने में ही तुम पाओगे परितृप्ति बरस गई, परितोष छा गया, आनंद ही आनंद है। फिर वसंत में फूलों से भरे वृक्ष को देखा है, वही सिद्ध की दशा है। उसके फूल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उसके फूल देखने के लिए भीतर की आंखें चाहिए। वसंत में नाचते हुए दुल्हन की तरह सजे हुए वृक्ष के पास से गुजरे हो, उसकी सुवास अनुभव की, लेकिन वह सुवास तुम्हें अनुभव हो जाती क्योंकि तुम्हारे नासापुट काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें सर्दी जुखाम हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा उस सुगंध का। फूल भरा हो वृक्ष लेकिन तुम अंधे हो तो शायद तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऐसे ही भीतर हम अंधे हैं और बहरे हैं, और भीतर हमारे हृदय में अभी अनुभव करने की क्षमता नहीं, इसलिए गुरु के पास एकदम से पता नहीं चलता कि क्या हुआ। लेकिन यही हुआ है, वसंत आ गया है, फूल खिल गए, सुवास उड़ रही है। जो थोड़े से करीब आने लगेंगे, जो पास सरकने लगेंगे गुरु के, जो गुरु के हाथ में हाथ अपना देने लगेंगे, धीरे धीरे ये तरंगें उन पर छा जाएंगी, ये मस्ती उनकी भी आंखों में भर जाएगी। ये संक्रामक है मस्ती, वे भी बेहोश होने लगेंगे, वे भी मदहोश होने लगेंगे। गुरु से संबंध तुम्हें अनुशासन देगा, एक जीवन की शैली देगा, ध्यान देगा, प्रेम देगा, अंतर्यात्रा के उपाय देगा। परमात्मा ने स्वतंत्रता दी, परिणाम है कि तुम गुलाम हो गए हो। गुरु तुम्हें एक तरह की गुलामी देता मालूम पड़ता है और परिणाम में स्वतंत्रता हाथ आती, ऐसा विरोधाभास है। गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को, गुरु उपदेशे सो तू छूटे जमफंद ते। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मनी के, गुरु के निवाजे सो फिरत हैं स्वच्छंद ते। गोविंद के किए जीव बूढ़त भौसागर में, उसके बनाए हुए परमात्मा के बनाए हुए लोग और भौसागर में डूब रहे हैं। गोविंद के किए जीव बूढ़त भौसागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद ते। लेकिन जिसने गुरु का हाथ पकड़ा वो दुख से और द्वंद के बाहर हो गए, वो दो के बाहर हो गया, दुई के बाहर हो गया, द्वंद के बाहर हो गया, इसलिए दुख के बाहर हो गया। दुख और द्वंद पर्यायवाची, तुम दुख में हो क्योंकि तुम दो हो, जब तक तुम दो हो तब तक तुम दुख में रहोगे। दो में ऐंचा तानी चलती रहेगी, बाहर के भीतर यह के वह, पृथ्वी की आकाश, चुनाव ही चुनाव, और चुनाव में खींचातानी है और चुनाव में तनाव है। एक ही बचे, मैं ना रहूं तू ही रहे, या मैं ही रह जाऊं तू ना रहे, एक ही बचे, फिर सारा द्वंद गया, फिर सारा दुख गया, फिर विराम है, फिर विश्राम है। गोविंद के किए जीव बूढ़त भौसागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद ते। औरऊ कहालों कहूं मुखते कहें बताई। सुंदरदास कहते हैं बड़ी मुश्किल है, जो कहना चाहता हूं कह नहीं पा रहा हूं, जो कहा वह पर्याप्त नहीं। गुरु की प्रशंसा कैसे करूं, किस मुंह से करूं, मेरी वाणी समर्थ नहीं। औरऊ कहालों कछु मुखते कहें बताई। गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते, गुरु की महिमा गोविंद से ज्यादा। इसलिए जिन्होंने महावीर में गुरु को देखा, महावीर को भगवान कहा, जिन्होंने बुद्ध में गुरु को देखा, बुद्ध को भगवान कहा। और तुम जानते हो बुद्ध भगवान में मानते नहीं, और महावीर ने कहा कोई भगवान नहीं, मगर फिर भी शिष्य नहीं रुक सका भगवान कहने से। शिष्य क्या करे, उसकी कठिनाई समझो, उसकी मजबूरी, उसकी असहाय अवस्था। उसको एक बात समझ में आ गई कि परमात्मा का बनाया हुआ तो मैं भटक रहा था, डूबता जाता था और अंधेरों में और विषाद में और तमस में। गुरु ने हाथ बढ़ाया, उबारा। ये हाथ भगवान के होने का पहला सबूत मिला। कबीर का वचन है ना, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, कबीर कहते हैं गुरु भी सामने, गोविंद भी सामने, परमात्मा भी आ गया सामने, गुरु भी खड़े, अब मैं किसके पैर लगूं पहले भूल ना हो जाए। अगर गुरु के पैर लगूं पहले तो कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा का मुझसे अपमान हुआ, और परमात्मा के पैर तो कैसे लगूं, क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा था ही कहां। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन वो कहते हैं गुरु की बलिहारी है कि उसने जल्दी से इशारा कर दिया गोविंद की तरफ। गुरु का सारा इशारा गोविंद की तरफ है, इसलिए गुरु गोविंद से भी बड़ा है, क्योंकि उसके सारे इशारे गोविंद की तरफ है। गुरु का उठना बैठना बोलना न बोलना, तुम्हारे प्रति कठोर होना करुणावान होना, सबके पीछे एक ही विराट आयोजन है कि तुम जाग जाओ, गोविंद तुम्हें दिखाई पड़ जाए। इसलिए कहते हैं सुंदरदास, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। इस जगत में गुरु को जिसने पा लिया उसने गोविंद को पा लिया, गुरु को पा लिया तो गोविंद अब ज्यादा दूर नहीं, पहुंच ही गए, मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो मंदिर अब कितने दूर है। जिसने गुरु को पा लिया, जिसने गुरु को पहचान लिया, उसने ये बात पहचान ली कि ये जगत पदार्थ पे समाप्त नहीं होता, यहां और भी महिमाएं हैं, और भी रहस्य हैं, यहां बड़े छुपे हुए राज, ये मिट्टी ही मिट्टी नहीं है, यहां मृणमय में चिन्मय भी छिपा है, यहां मर्त में अमृत का वास है। जिसने गुरु को पहचान लिया उसने नाव छोड़ दी परमात्मा की तरफ, वो चल पड़ा, उसका तीर निकल गया धनुष से, लक्ष्य भेद हो ही जाएगा। असली सवाल धनुष से तीर का निकल जाना है। गुरु के चरणों में जो झुका वो झुक ही गया परमात्मा के चरणों में परोक्ष रूप से। गुरु तो बहाना है, गुरु तो निमित्त है। जीवन में तुम्हें जहां भी किसी जीवंत व्यक्ति के पास शांति मिले, सुगंध मिले, प्रेम मिले, तुम्हें रूपांतरित करने की कीमिया मिले, फिर संकोच मत करना, फिर रुकना मत, फिर किन्हीं भयों के कारण ठहर मत जाना, फिर साहस रखना, झुक जाना, दांव पर सब लगा देना, और ध्यान रहे कोई और कसौटी नहीं है गुरु को जानने की, तुम्हारा हृदय ही कहेगा। हृदय हमेशा कह देता है मगर तुम सुनते नहीं हृदय की। तुम कहते हो कैसे गुरु को पहचाने, क्या कसौटी, बुद्धि कसौटी मांगती, हृदय तत्क्षण कह देता है। हृदय की सुनो, बुद्धि को एक तरफ रख दो, हृदय से कभी भूल नहीं हुई है। हृदय ऐसे ही है जैसे तुमने दिशा सूचक यंत्र देखा जो सदा ही बताता रहता है पूरब की ओर, सूरज के उगने की ओर। हृदय सदा ही परमात्मा की तरफ इशारा करता रहता है मगर तुम हृदय की सुनते नहीं, तुम बुद्धि की सुनते हो, और बुद्धि की सुनने के कारण अक्सर तुम भ्रांति में पड़ते हो। सच तो ये, बुद्धि की सुनते रहोगे तब तक गुरु तुम्हें मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेंगे वो गुरु के धोखे होंगे। गुरु के धोखे तुम्हारी बुद्धि को राजी कर लेंगे, क्योंकि गुरु के धोखे का मतलब होता है जो तुम्हें राजी ही करने को बैठा है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही बन के बैठा है। ध्यान रखना, सदगुरु कभी तुम्हारी अभिलाषाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता, हो ही नहीं सकता, नहीं तो जीसस को लोग सूली चढ़ाते, बुद्ध को लोग पत्थर मारते, महावीर को गांवों से खदेड़ के निकालते, सुकरात को जहर पिलाते। और तुम ये मत सोचना कि वे सब लोग पागल थे, तुम ही पहली दफे बुद्धिमान हो, वे तुम्हारे ही जैसे लोग थे, तुम ही थे जिन्होंने जीसस को सूली दी, सुकरात को जहर पिलाया, बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर के कानों में सींकचे ठोंक दिए, तुम ही हो वे, वे तुमसे भिन्न लोग ना थे, तुमसे जरा भी भिन्न ना थे, क्या मामला था। और ऐसा नहीं है कि गुरुओं की पूजा उस दिन नहीं हो रही थी, जब बुद्ध को लोग पत्थर मार रहे थे तब भी पंडित, पुजारी, पोंगापंथी पूजे जा रहे थे, जब जीसस को लोग सूली चढ़ा रहे थे तब भी धर्मगुरु का सम्मान किया जा रहा था। बड़े मजे की बात है कि तुम्हारी बुद्धि जिससे राजी हो जाती है वो अक्सर धोखा होता है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो धोखे की पूरी तैयारी करता है। तुम अगर मानते हो कि सदगुरु नग्न होना चाहिए तो वो नग्न खड़ा होता है। तुम अगर मानते हो सदगुरु आंख बंद किए होना चाहिए तो आंख बंद करके खड़ा होता है। तुम अगर मानते हो कि सदगुरु ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो वैसे हो जाता। उपवास को तो उपवास करता है, कांटों पे लेटो तो कांटों पे लेट जाता। उसने तय कर रखा है कि तुम्हारा गुरु बनना है। वो गुरु नहीं, वो एक गहरे अर्थ में सिर्फ राजनेता है। राजनेता की कला का सार यही है कि वो देखता रहता लोग कहां जाना चाहते। लोग जहां जाना चाहते हैं वो जल्दी सोचक के उनके आगे हो जाते। बस उसी को कुशल राजनेता कहते हैं जो हवा के बदलने के पहले समझ ले, रुख देख ले हवा का। लोग पूरब जा रहे हैं तो वो कहता पूरब जाना है। लोग पश्चिम जाने लगे तो वो कहता मैं तो सदी से कह रहा था कि पश्चिम जाना। और लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता कि वो हमारी नजरें परख रहा है, हमारे भाव परख रहा है, हवा के ढंग परख रहा है। और सदा चिल्ला के कहने लगता है वही बात जो तुम्हें चाहिए। और तुम्हें लगता है कि ठीक है यही आदमी हमारी मनोकांक्षाएं पूरी करेगा। किसी ने कभी किसी की मनोकांक्षाएं पूरी नहीं की। सदगुरु तुम्हारी मनोकांक्षाएं पूरी नहीं करता, तुम्हारे मन को मिटाता है। मनोकांक्षा कैसी पूरी करेगा? सदगुरु तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता, परमात्मा के हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से चलता है। उसके साथ तो जिससे राजी होना हो उसे ही राजी होना पड़ता है, वो तुमसे राजी नहीं होता। समझ लेना जो तुमसे राजी है वो तुम्हें बदल नहीं पाएगा। उस डॉक्टर के पास तुम चिकित्सा कराने जाओगे जो तुमसे राजी है। तुम कहो कि मुझे टीबी है तो वो कहता हां टीबी है। तुम कहो कि मुझे ये दवा चाहिए क्योंकि ये दवा मीठी, वो कहता यही दवा तुम्हें लिखी रात। ऐसा डॉक्टर तुम्हें स्वास्थ्य दे सकेगा? तुम बीमार हो और तुम्हारा डॉक्टर पाखंडी। तुम लाख कहो कि मुझे ये दवा चाहिए, चिकित्सक अगर चिकित्सक है तो वो कहेगा ये दवा नहीं तुम्हारे काम की, दवा तो जो मैं देता हूं वो तुम्हारे काम की। और मीठी दवाएं देने का सवाल नहीं, कितनी ही कड़वी हो दवा काम की है तो पीनी पड़ेगी। चिकित्सक तुम्हारी बात मान के नहीं चल सकता, तो ही तुम्हारी सहायता कर सकता है। सदगुरु के संबंध में एक बात ख्याल रखना, बुद्धि के पास कोई उपाय नहीं सदगुरु को जांचने का। बुद्धि जब भी जांचती गलत को पकड़ लेती। बुद्धि गलत को पकड़ने की प्रक्रिया है, बुद्धि अज्ञान है। बुद्धि को हटाओ, हृदय को बोलने दो, उठने दो हृदय की वाणी को। एक तरफ बुद्धि को सरका के रख दो और तुम चकित हो जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारा सदगुरु होने को है उससे तुम्हारे हृदय के तार एकदम झनझना उठेंगे। तुम अचानक पाओगे कुछ हो गया, कुछ बात जुड़ गई, कुछ तालमेल बैठ गया, सरगम बजने लगी, पैरों में नृत्य का भाव आने लगा, एक कंपन प्रविष्ट हो गया। सदगुरु के पास होना ऊर्जा का एक संबंध है, शक्ति का एक संबंध है। जो भी बुद्धि को एक तरफ सरका के रख देता है उसे जरा भी अड़चन नहीं आती सदगुरु को खोजने में। और यह भी ख्याल रखना जो तुम्हारे लिए सदगुरु है, जरूरत नहीं कि सभी के लिए सदगुरु हो। जो किसी और के लिए सदगुरु है जरूरी नहीं तुम्हारे लिए सदगुरु हो। लोग भिन्न है, लोगों की जरूरतें भिन्न है, लोगों को अलग अलग संगीत रुचिकर लगते हैं। परमात्मा बहुत रूपों में प्रकट होता है, इसलिए सुंदरदास कहते हैं और तो संत सबे सिर ऊपर। इससे यह मत सोच लेना कि तुमने एक सदगुरु चुन लिया तो सारे सदगुरु गलत होने चाहिए। इतना ही कहना और तो संत सबे सिर ऊपर सुंदर के उर है गुरु दादु। बस इतना ही कहना कि मेरा हृदय यहां रंग गया, बाकी सब संतों को मेरे नमस्कार है। जिनका हृदय वहां रंग गया वह भी सौभाग्य की बात है। हृदय रंगना चाहिए, परमात्मा का रंग सब पर बरसे और सब रंग जाएं। कहां रंगते हैं, किस रंगरेज के पास रंगे जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, रंग उसका है। इसलिए यह भी मत कभी सोचना भूल के कि मेरा सदगुरु सबका सदगुरु होना चाहिए। इससे विवाद पैदा होता है, संप्रदाय पैदा होते हैं, हिंसा पैदा होती है, वैमनस्य पैदा होता है। और धर्म से पैदा प्रेम होना चाहिए, और कुछ भी धर्म से पैदा हो तो धर्म धर्म नहीं रहा, राजनीति हो गई। हटाओ बुद्धि को, हृदय को बोलने दो। हृदय सदा ही सच बोलता है, हृदय की सुन के चलो। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा सूर्योदय हो। ज्ञान की धरती, लगन के साधना के नीर सींची, भावना की खाद डाली, ऋतु समय से प्रेम के कुछ बीज बोए, कल उगेंगे अरुण अंकुर। कस मसाकर तोड़ मिट्टी की तरुण सौंधी परत को, धूप नूतन रूप देगी मेघ बरसा में, सघन घिरकर बरसकर तर करेंगे मूल तक को, गंध फूटेगी गमक कर, गांव वन उपवन हंसेंगे, घर नए उजड़े बसेंगे, प्राण प्राणों से जुड़ेंगे, मुक्ति कण कण को छुएगी शरद की गीली हवाओं के परस से, नए पत्ते नए कल्ले नई कलियां खिल उठेंगी, रंग फूटेंगे धरा पर इंद्रधनुषी, सुरभि से उद्धान महकेगा अनवरत। कर्म श्रम निष्फल कभी होता नहीं है, है अटल विश्वास सुख के, शांति के आनंद के फल फूल निश्चय ही मिलेंगे। आज इतना ही।
आज के एपिसोड में हमने कुछ लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलरेपा, ओशो के बर्थडे सेलिब्रेशन और स्वामी वेदांत की सुनी, और आनंद त्रिजा की एल्बम से लिया गया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक, ओशो के एक नए सेलिब्रेशन तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, कलम करूं वन राई, जो वन है पूरे वृक्ष है उनकी कलम बना, धरती को कागज बना दूं, सब धरती कागज करूं, कलम करूं वन राई, सात समुद्र की मसी करूं, सातों समुद्र की शाही बना दूं, गुरु का उठान ना नहीं कर, गुरु का उठान नहीं कर सकता, चाहे सारी धरती कागज बन जाए, चाहे सारे पेड़ जो है कलम बन जाए, चाहे सारे समुद्र शाही बन जाए, अगर मैं गुरु के बखान लिखने बैठू वो भी पूरा पड़ेगा।
this life our celebration of the joy we've come to know. My love for you, Osho, is overflowing. This life our celebration of the joy we've come to know. My love for you, Osho, is overflowing. This life our celebration of the joy we've come to know. My love for you, Osho, is overflowing. This life our celebration of the joy we've come to know. My love for you, Osho, is overflowing. Alive, 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 alive,
this life our celebration of the joy we've come to know. My love for you, Osho, is overflowing. This life our celebration of the joy we've come to know. My love for you, Osho, is
Thank you. Good night. Thank you.
Arigato.